रूपां सागर जातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा
कृष्ण सहकना
नमिता श्री विशाखान्वितंश्च करुणा सिंधु
जिना बंधु
जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते
सप्त कांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानन्द श्रियाद्वैत गदाधार श्रीवासादि
गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुन कि भौतिक जगत में बहुत सारे दुख सब स्थानों में दुख ही दुख है, क्योंकि जो शाश्वत आत्मा है वो शाश्वत सुख की तलाश में है। आत्मा वो आशा करते हैं और उससे कम कोई चीज को नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन जब वो अमर आत्मा अपने आप को इस यंत्र से अपने को पहचानते, ये क्षणिक ये शारीरिक के अपने आप को पहचान और जो सूक्ष्म मानसिक शरीर है, हम सोचते हैं कि ये मैं हूँ, हम लोगों को इस गलत विचार से आकर्षित कर रहे हैं और इससे हम विमोहित हो दूसरे विचारों से लोगों से, और ये अनंत चक्र हो जाता हमारी सारी समस्याओं का हल जो इस मूल सिद्धांत को नहीं जानते हो कि हम भगवान के अंश हैं हम शुद्ध हैं, हमारा सच्चा सुख है आत्मा और परमात्मा के बीच में जो प्रेम है उसके बीच में। हमारी समझौता जो है वो ऐसा है जैसे अग्नि में लकड़ी डालना। अग्नि जो भूखी है, अगर आप उसको लकड़ी दोगे तो थोड़ी देर के लिए अग्नि शांत हो जाएगी, लेकिन बाद में वो फिर जागृत हो जाए, जब जलाने के बाद फिर वो प्रकट हो जाए। प्रहलाद महाराज भागवतम में बताते हैं कि इस भौतिक दुनिया में जो समस्याओं के हल, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जो समस्याओं का हल जो थोड़े समय, वो और ज्यादा जटिल कठिनाई करते, मूल समस्या से भी ज्यादा बड़े समस्या पैदा करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि सब जगह पर ये कोई नई नहीं है, ये दुख का कारण है। हम समस्याओं का हल करने का प्रयास करते और समस्याओं को और बढ़ा देते तथा कथित हल से श्रीमद्भागवत में ब्रह्मा जी के प्रार्थना में बहुत सुंदर श्लोक है, पदम पदम नवि पदम नतीशम समाशित पद प्लवम। जो कोई व्यक्ति मुरारी के चरणों का आश्रय लेता, कृष्ण का एक नाम है मुरारी, इसका मतलब मूर राक्षस को मारने वाले। और कई बार कृष्ण को इस तरीके से संबोधित करते हैं। भगवत गीता में जब अर्जुन बहुत भ्रमित थे, सब बहुत भ्रमित थे, वो बुद्धिमान थे, ऊंचे जन्म में थे, गीता हमें बताती है कि हम चाहे कोई भी हो, जो भी हम जानते हो, हमें ऐसी स्थिति में डाला जाएगा जो हमारे से परे है। हो सकता है वो बीमारी हो, आर्थिक नाश के कारण, या हो सकता है संबंध नष्ट हो जाए, और एक प्रकार के जो है विपत्तियों के कारण, इच्छाएं नष्ट होने के कारण, और उस दुख में आप कैसा उसका प्रभाव देख, कैसे उसके साथ व्यवहार करते। जो असुर है, अज्ञान का जो असुर है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, वो बादल जो है वो हमें, हमारे सच्चे स्वार्थ से हमें छुपा देता है, वो असुर की तरह। और माया या माया के बादल के कारण बहुत सारे रूप प्रकट करते हैं, काम, बहुत सारे सुख प्राप्त करने की इच्छा, मान सम्मान, जीवन के भौतिक अनुभव के लिए काम क्रोध। गीता में बताया गया कि ये जो हमारे सबके शत्रु हैं वो है कि स्वयं की जो इच्छा है, काम ईश्वर, जब वे पूरे नहीं होते तब हम क्रोधित हो जाते, हम अपराध कर बैठते हैं, हम ऐसे तरीके से कार्य करते हैं, और बाद में हम इस पर पश्चाताप करते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसे व्यवहार नहीं अच्छा नहीं, तो हम क्रोध में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो बढ़ता जाता है और बुरे भयानक कार्य हो जाते। काम क्रोध लोभ अभिमान लोभ और मोह, ये सब असुर हैं जो भगवान के प्रति प्रेम में सेवा से हमें रोक रहे हैं। ये सब अज्ञान से पैदा हुए। कृष्ण का एक नाम है मुरारी, क्योंकि वो इस दुनिया में आते हैं इस असुरों को मारने के लिए। कृष्ण ने बहुत सारे बड़े असुरों को मारा, अरिष्टासुर, वत्सासुर, बकास, शिशुपाल, कंस, ये सब असुरों को मारा भगवान। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, लेकिन भगवान क्यों इतने बड़े असुरों को मारते हैं? वो सिर्फ इसलिए नहीं और लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कि जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, हम सबको आशा प्रदान करने के लिए, जो हमारे हृदय में भी असुर है अगर हम कृष्ण की ओर मुड़ेंगे, कृष्ण हमें माया के भ्रम से मुक्त कर सकते हैं। और इतिहास जो संदेशों से भरे हुए हैं, क्योंकि हर एक अवतार में जो असुर हैं, जो कि इतना दुनिया में इतना भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो किसी भी किसी सबकी योग्यता से परे थे। ये सब असुर जो हमने बताए हैं, ये नहीं कि खाली ऋषि या साधारण व्यक्ति, सबसे बड़े देवता भी इनके सामने नहीं टिक पाए। अंततः एक ही हल है कि अपने आप को नम्र बना और कृष्ण को पुकारना। मुरारी इनका नाम, हे मुरारी, असुर को मेरे हृदय में जो असुर है, जिससे मैं आपके प्रेम का इस दुनिया में प्रचार कर सकूं, बजाय इसके कि माया के लोभ या अभिमान का औजार बनो, ये हमारे चयन करने की अवस्था है। ये सब चयन है जो हम सबको व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। क्या हम माया के औजार बनना चाहते हैं? अगर हम माया के औजार बनेंगे तो हमारे पास बहुत सारे चॉइस है, उसमें तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये सब। जब हम तमोगुण के भी औजार बन सकते हैं, जिसमें नशे, हिंसा, या हम रजोगुण में उनके औजार बन सकते, लोभ कर्म के द्वारा अपने आप के लिए और एकत्रित करने, या हम सत्वगुण में इस दुनिया को अच्छा स्थान बनाए और दूसरों के लिए कल्याण कार्य करना, ईमानदारी और दान देना, लेकिन ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या है और सच्ची आवश्यकता क्या है, आत्मा की आवश्यकता क्या है। या हम कृष्ण कृपा के, इस दुनिया में कृष्ण कृपा के औजार बन सकते हैं। कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रकट हुए मुरारी, और जब हम कृष्ण को पुकारेंगे अच्छी भावना से, अगर पुकारेंगे उस तरीके से जैसे देवता और सब लोगों ने पुकारा जब कंस या हिरण्यकश्यपु के सामने थे, कृष्ण हमें मुक्त कर देंगे नस्लों से, हमें शुद्ध बना देंगे। जो मुरारी का आश्रय लेते हैं, उस दुनिया की जटिल स्थितियां भी हैं, अपने आप को इस दुनिया के दुख से मुक्त करना वैसे कि जैसे समुद्र के समुद्र को पार करना एक बड़े बड़े जो चैंपियन स्विमर होते हैं ट्रेनिंग प्रॉप किए हो सकते कि 30 माइल तक हमारे ज्यादा स्विमिंग कर सकते लेकिन सागर में क्या फर्क पड़ता है हजारों मील है भागवतम में बताया गया इस भौतिक दुनिया के सागर को पार करना दूसरे लोगों की मदद से पार करना जो स्वयं बादल से ढके हुए वो ऐसे जैसे कि एक कुत्ते की पूंछ को पकड़ना जो लगता है कि बहुत अच्छा तैर सकता है समुद्र पार करना मिथ्या आशय मैं पकड़ा हुआ मेरा प्रयास नहीं कर रहा मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ी लेकिन दोनों डूब जाने वाले दूसरा उदाहरण आजकल के दर्शन शास्त्र विज्ञान कितने ज्यादा सजे सजे हो बड़े डिग्री से और बड़ी कलाओं और बहुत सुंदर का वो ऐसे कि जैसे समुद्र पार करना एक पत्थर की नौका से पार करना अगर वो पत्थर के नौका के ऊपर बहुत सुंदर झंडे हो और उसके ऊपर बहुत सुंदर मणि सजाए हुए तो भी वो डूबने वाला लेकिन अगर हम मुरारी का आश्रय लेते हैं तो पूरा सागर वो ऐसा हो जाएगा वो एक बछड़े के पैरों में जितना पानी श्रीमद् भागवतम में बछड़ा का उनका कद इतना छोटा होता है वो छोटे बच्चे की तरह कृष्ण बताते हैं हमें मैया अध्यक्ष ने प्रकृति सुविधे सचराज भगवान बताए कि मैं ही ईश्वर हूँ सब दुनिया का अगर हम कृष्ण की शरण आ जाएंगे तो असंभव चीज भी संभव हो जाती में हम बिताते हैं हमारी इच्छा से इस भौतिक दुनिया में वो निश्चय करता है कि हमारे समर्पण के भाव को निश्चय करता है ये नहीं कि गोवर्धन परिक्रमा करना कि खांसी मिल गई या नहीं मैं शुद्ध हो गया और हम वापस चले जाएं और अपने जीवन को बेकार कर देना समर्पण का मतलब है कि हर क्षण हमारे पास चॉइस है ये समय बीतता जा रहा है महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन थे जीवित रहने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसके तो पता था उसके पास 7 दिन लेकिन हमारे पास ये धरती में कोई एक व्यक्ति नहीं जिसको पता है कि हमारे पास एक दिन भी हो इतना गारंटी नहीं है हर कदम पे खतरा है हम इन पवित्र स्थानों में आते हैं कई कारणों से आते जीवन में यह निश्चय करने के लिए कि मुझे क्या चाहिए मैं कौन हूँ जीवन का उद्देश्य क्या है सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछे। लोग मुझे बड़ा विद्वान कहते और मैं तो इतना मूर्ख हूँ कि विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन, मैं जीवन का उद्देश्य क्या है। वास्तव मानव जीवन वो तब उतना है जितना कि हम जितना हम ये इन प्रश्नों के जवाब को हम समझ सके। और ये सत्य है कि ये दुनिया जो भी हम हैं बहुत हमें बांधने वाले, सिर्फ अच्छा करना भी इतनी सारी स्थिति होती है कि हम और हो सकता है कि इसे हम अच्छा भी करने का प्रयास करो फिर भी बुरे व्यवहार स्थिति की चिंता के कारण खतरे डर अच्छे लोग भी जो सच्ची समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कर रहे, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। एक मुख्य सिद्धांत है हर एक धर्म का, विशेष करके वैष्णव धर्म का, के पवित्र स्थानों में जाना, पवित्र लोगों के साथ हमारे महत्वपूर्ण चीज क्या है उसका साक्षात्कार करें। और कृष्ण की कृपा से जब हमारे पार्षदों के साथ आदान प्रदान, जब भी आपकी प्रार्थना एकदम प्रामाणिक नहीं भी, आपको ज्यादा प्रामाणिक बनाने के लिए कृष्ण हमें तपस्या देते हैं। वो तपस्या का स्वागत करना चाहिए। तपो देवियम पुत्र का ये नश्वर मानव जीवन जो है तपस्या के लिए, इसका मतलब है कि सब तकलीफों का स्वागत करना, स्वागत कर और उन आत्म साक्षात्कार के लिए सब कष्टों को स्वीकार करना। मुझे याद आ रहे जब श्रील प्रभुपाद जी आए 1976 में, प्रभुपाद जी अपने आसन पे बैठे, पहली चीज उन्होंने कहा, वो एयरपोर्ट से आए, और एक साइन लगा हुआ था बोर्ड कि रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और रोड कंस्ट्रक्शन के कारण ट्रैफिक जाम हो गया, और वहाँ बोर्ड लगा। प्रभुपाद जी ने सब चीजों को देखा, उसमें लिखा हुआ था कि क्षणिक असुविधा शाश्वत सुविधाओं के लिए। प्रभुपाद जी बोले यही भ्रम है, ये सब तो बोल रहे हैं कि असुविधा सुविधाओं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जीवन उसके लिए है। हम थोड़ी सी असुविधाएं स्वीकार करते हैं इस उद्देश्य से हमारी साधना में सेवा, और उसमें शाश्वत सुविधा पैदा हो जाती। और वो बोले कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मानव समाज का क्या लाभ ही क्या है। हम जज करते हैं कि प्रगति कैसे व्यक्ति के चरित्र के अनुसार, और ये चरित्र कैसा हो सकता है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य अपने अपने अभिमान से, ज्ञान क्या सत्य है क्या असत्य है, और ज्ञान और वैराग्य का फल है भक्ति। यहाँ पर हम अपने शरीर मन और वचन को उपयोग करते हैं सेवा के लिए, भगवान की प्रेममय सेवा के। और फिर उन्होंने कहा कुत्ता जो है वो चार पैर पे दौड़ रहा है और मानव जो है मानव चार पहियों पे दौड़ रहा है, क्या दोनों में क्या अंतर है, क्या प्रगति है। थोड़े दिन पहले मुझे फोर्ड मोटर कंपनी में लेक्चर देने का, मैं इस उदाहरण के बारे में सोच रहा था जब मुझे फोर्ड मोटर कंपनी में और लेक्चर के बाद कोई मुझे कंपनी दिखा रहे थे कैसे नए कार बने और वहां पे एक साइन लगा हुआ था मेरे को एक साइन दिखा तो बता नहीं सकता वो क्या था। अगले 10 साल 20 साल क्या नए कार कैसे वो कार्य कर और टेस्ट ड्राइव पे ले जा रहे थे 160 किलोमीटर की स्पीड से एक टेस्ट ड्राइव ले जा रहे थे। हर एक 3 सेकंड में दिशा बदल रहे थे। मैं सोचा था मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ लेक्चर देने के लिए आया था सबसे फास्ट कार दिखा रहे थे और तेजी से कार चला रहे थे, मैं जब कर रहा था मेरा जब बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बहुत सारे मशीन मैं सब देख रहा था, सब बिलियन डॉलर खर्च हुए। मैं श्रील प्रभुपाद जी के मैं सोच रहा था मैं 10 फीट दूर बैठा था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे दोनों में क्या अंतर है, कुत्ता भी दौड़ रहा है चार पैर पर और व्यक्ति चार पहिए पर। अगर सब लोग ये सुविधा अपना दिमाग अपना शरीर को और अपना समय सच्ची समस्याओं का हल करने में उपयोग करते, हम कार खरीदी करते हैं आहार निद्रा भय मैं तो मानवता के और मानव के दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब तक कि हम अनुभव करने का प्रयास नहीं, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के भाव नहीं कर, वास्तव में समस्या का हल तभी हो सकता है। हम लोगों के पवित्र लोगों के साथ आते हैं ये चीजों को याद दिलाने के लिए। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज क्या है जो अंत में नष्ट जाने वाली, हम जहाँ भी हों और फिर घर में रहना, पत्नी बच्चों के साथ रहना और बच्चों को माता पिता फिर उनको नौकरी फिर स्कूल जाना, इतने सारे हमारे पथ भ्रष्ट करने वाली चीजें हैं। अगर हमारी साधना अच्छी है और हमारा संग अच्छा है तो हम वो दिशा को बनाए रखते हैं और हम कृष्ण के साथ संबंध को बनाए रख सकते हैं और पवित्र स्थान में आने से इसे मदद होती, ये करने में लाभ होता है। पवित्र स्थान में आने से हमें शक्ति प्राप्त होती है, हमारी श्रद्धा को बढ़ा देते
हैं।
वृंदावन जो सारे पवित्र में, यहाँ सबसे पवित्र, हरेक पेड़, हरेक जो हरेक जो धूल, हरेक पत्थर जमीन पर, या जो हवा जो हम सुन, चाहे उसमें कुछ भी मिक्स किया हो, फिर भी उसका आधार है वो कृष्ण की लीला को, और कृष्ण के लीला, शुद्ध प्रेम, सारे आचार्य, सारे संत चारों हजारों सालों से करते आ रहे, और हमें वस्तु के साथ अपने आप को प्रभावित को स्वीकार करना चाहिए, और हमें बहुत का लाभ प्राप्त हो सकता है। हमें अगर हम अच्छे संग में नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता। जगदानंद पंडित, वो चेतन महाप्रभु के प्रति गुस्से, क्योंकि उनका भगवान से विशेष संबंध था, और वो बोले कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि गुस्से के भाव में मत जाओ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो जाना चाहते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले, फिर जगदानंद पंडित ने, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है हम सब के लिए, हमें पवित्र स्थान में जाना चाहिए वृंदावन की तरफ। ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए, कि हमारी प्रवृत्ति है कि हम वहाँ के वासियों के साथ मित्र बन जाते हैं, धाम के साथ। हम सब चीजों को समझते हैं कि बहुत आसान समझ, उनको साधारण मान लेते हैं, और हम अपराध कर बैठते हैं। अगर हम पवित्र स्थान में जाते हैं तो हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, साधु पुरुषों के संग में रहना चाहिए, जो हमें धाम का दर्शन दिलाएंगे। जब बहुत सारे लोग एकत्र हो रहे हैं इस उद्देश्य से, ये तो आशीर्वाद की तरह है, बरसात हो रही। चाहे हम एक दो तीन लोग के साथ आए, या हम 5,000 लोगों के साथ आए, ये भाव ये है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। जो भी हमारी प्रामाणिक, हमारी प्रार्थना, जप करने का उत्साह, इन स्थानों में जाने का, प्रार्थना करने, दया के लिए भागना, सेवा करने की इच्छा, वो सबको और हमें भी ऊपर उठा लेते हैं, और उस संग में हम ऊपर उठान हो जाता है हमारा, कृतज्ञ होते हैं। हमारे गौरंग प्रभु, राधा वल्लभ प्रभु और दूसरे भक्त, हम बर्तन के बारे में सोच रहे, जो कुक प्रसाद बना है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, प्रसाद अपने आप के बारे में बता रहे। ये जो भक्त हैं, उन्होंने कई महीने बिताए योजना बनाने के लिए, किचन की योजना बनाने, क्या भोग प्लानिंग, कैसे प्रिपरेशन बन, यात्रा की शुरुआत से पहले ही। वेणुधारी प्रभु, गौरंग प्रभु IIT इंजीनियर, वो भी ग्रेजुएट इंजीनियर है, और जो बटन साफ करने वाले MTech किया IIT, ये परंपरा है। जब बैचलर डिग्री है कुक होते हैं और जो बर्तन मैं तो जूनियर कॉलेज में एक 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 सेमेस्टर और वो मेरे से मार्गदर्शन के लिए आता ये भक्ति का लॉजिक है और गोविंद प्रभु की तरफ देखते हैं अगर उनकी तरफ उठा करो दिखाएं सबको डर लग जाता है गोविंद प्रभु कॉलेज कभी गए कहीं बेलगाम में मराठी सब सीखे उन्होंने अपनी शक्ति बिताई एक रेलवे बनाने की आपने किचन का रेलवे सिस्टम देखा और जो क्रेन बनाई गई बड़े बड़े बर्तन को उठाने के लिए योगी योगी बनने की जरूरत नहीं खाली क्रेन की जरूरत सांबर का बर्तन कितने गैलन्स का कोई बोलना नहीं था सात सौ लीटर एक पॉट बड़ा बर्तन और एक पतला व्यक्ति चेन खींच रहा है कोई छोटे बच्चे करते पॉट ऊपर जाते कोई धक्का देता है और चल पड़ते हैं अचिंत्य कितना भक्ति कितना विचार और बनाने के लिए 5,000 लोगों के लिए सात आइटम बनाना दोपहर के समय जो ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में जब मैं किचन में जाता ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो खुशी से कर रहे हैं और माता जी बेलगाम से वो रोटी बना रहे एक दिन में 10,000 रोटियां और वो गा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं बड़े खुशी कभी रोटी कभी डोसा बाकी सब लोग परिक्रमा जा रहे अलग अलग जगह पर और प्रसाद बना रहे पूरा दिन हर रोज सेवा के रूप में प्रसाद खाना भी सेवा और प्रसाद बनाना भी सेवा और प्रसाद की सर्व करना सब कुछ सेवा ये सिर्फ सेवा की बात है हमारी चेतना की बात है जब हम पवित्र स्थान में आते हैं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के और भक्तों के संग जो जो भक्त जो श्रवण और कीर्तन के लिए उत्सुक ये आशा नहीं करते कि वो ठीक ऐसा करते हैं कि मैं दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए औजार बनूं अगर हम यात्रा में कि मुझे क्या मिलेगा, अगर हम ये सोच रहे हैं मुझे ये चाहिए मुझे वो
चाहिए,
हम अवसर को खो रहे हैं। हमें सेवा करने के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि कई ये कई महीने बिता रहे हैं और सारे उनकी शक्ति, सारे उनके भक्ति वो इस भोजन में, मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए पूर्ण संतुष्टि की। और अगर आप लगते हैं वृंदावन और गोवर्धन में आपको बचने को सोचे कि जो कई महीने तक जिनको सब रूम का इंतजाम करना पड़ा, उनको एक साल पहले ही शुरुआत करना पड़ता है। कार्तिक यात्रा में जा रहे, हमें योजना बनाना पड़ता है कमरों के बारे में इस यात्रा के अंत से पहले, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। कई साल मेहनत करते हैं और बसेस, ये भारत के बस है, वो बस ही और चैलेंज रहते हैं। और जो भी चिंता आपको होती है उनके ऊपर आ जाती है, जो अगर सब लोग कर रहे हैं उस पर सराहना कर, कृतज्ञ रहना, तो हम आध्यात्मिक प्रगति कर। जब हम कृतज्ञ होते हम सुखी हो जाते हैं, कृतज्ञता से सुखी आती है। जब हम अगर हम अकृतज्ञ हैं तो सुखी नहीं हो सकते। कृतज्ञ हृदय जो होते हैं हमेशा और कुछ चाहता है, सब हमारे अभिमानी इच्छा से। कृतज्ञता का मतलब है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा सेवा करने के लिए, औजार बन अपने आप को कृष्ण में मग्न करना, कृतज्ञ हृदय से। और फिर चाहे जो भी हो जाए ये सुंदर है, तो कृपा के रूप में स्वीकार कर, कृपा के रूप में स्वीकार कर। कृष्ण जो करुणा सिंधु, जो प्रेम के औजार हैं, कई सालों से कई बार कई सालों से हमारी सपना रहा था कि गोवर्धन पे हमारी यात्रा, वृंदावन बहुत सारे स्थान और वहाँ पर पंडाल बनाना और प्रसाद बनाना सब बहुत मुश्किल है। फिर हम आइडिया में कुछ साल पहले हाफ आधा यात्रा वृंदावन में, आधा गोवर्धन में होना चाहिए। पहले कहा गया कि असंभव है, मैंने कुछ बोला ही नहीं। भक्त इतने ज्यादा सुशिक्षित, वो जानते हैं कि कैसे अपने जवाब का जवाब देना। और फिर बोले हम प्रयास करेंगे और हम यहाँ पर हैं। कुछ असुविधाएं, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो असुविधाएं जो आपकी सेवा में होती है वो मेरा सबसे बड़ा सुख है। कल हम आपको कर्म परिक्रमा बता रहे थे, आपको ध्यान जो मानसिक परिक्रमा की हम चर्चा कर रहे थे,
अगर
आपको याद है कहाँ पर है, हम अन्य ओर की बातचीत कर रहे थे। कल बहुत जल्दी सवेरे हम भोग बनाने वाले श्री गिरिराज जी को अर्पण करने के हम यहाँ पर लेकर आएंगे गिरिराज जी के चरणों में गोवर्धन को अर्पण करने के लिए। इतने सारे स्टोव बनाए जाएंगे। एक सौ पचास स्टोव होंगे जो खेत में लगाए जाए। बड़ा उत्सव होगा। बहुत अच्छी धुआं निकलेगी वृंदावन के लकड़ी गाय गोबर जो हमारे फेफड़ों को और आंखों को शुद्ध बना, हमारे हृदय को शुद्ध बनाएंगे। और हम सब ऑफरिंग लेकर गिरिराज जी को अर्पण करेंगे। और हम ये कर रहे हैं कृष्ण के पदचिन्ह और महान आचार्यों के पदचिन्हों में चल रहे। वो सब अन्नकूट उन्होंने अर्पण किया था, बड़े बड़े भोग अर्पण किए कृष्ण बलराम जी। हम करेंगे अन्नकूट क्षेत्र में दान निवर्तन कुंड और संकर्षण कुंड के बीच में। हम परिक्रमा पे पीछे जा रहे, हम उसके बाद आगे गोविंद कुंड आते। यहाँ पर जैसे कि हमने गोवर्धन पूजा के दिन बताया था, इंद्र के जो स्वर्ग लोक के सबसे शक्तिशाली देव, उनको विशेष कृपा मिली कृष्ण से। कौनते प्रति जाने नमे भक्त प्रणश्यत, कृष्ण वचन देते हैं गीता में। अर्जुन को बोलते हैं कि आप वचन दो, मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। कृष्ण सारे जीवात्माओं के माता पिता और विशेष करके भक्तों से उनका बहुत प्रेम होता है। कैसे कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वो हमारे जैसे हम ऑर्डर फॉर्म भरते हैं उसके अनुसार नहीं, जो हमें आवश्यक है वही चीज कृष्ण देते हैं। अगर जो हम चाहते हैं वही आवश्यक है तो कृष्ण वो दे देंगे। इंद्र की बहुत शक्तिशाली सेवा, लेकिन सारे भक्तों के तरह जो ऐतिहासिक रूप से बहुत छोटे थे, जैसे हमको पोजीशन मिलती है, जो हम होशियार बनते हैं, हमको लोग हमको आदर करते हैं, उतना ही हम हमारे अंदर माया के मूल अनर्थ से प्रभावित, अहंकार से हम प्रभावित हो जाते। नम्र बनने के समर्पण करना होता है। अब देखते हैं कि भौतिक अस्तित्व के जो प्रवाह है जो बहुत तेजी से बह रहा है, जो जन्म मृत्यु के सागर की तरफ जा रहा है, अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, हमको तरंग के विरुद्ध दिशा में जाना है।
yes,
अगर हम प्रामाणिक हैं कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर अगर हम प्रामाणिक हैं अगर हम कृष्ण के समर्पण में मैं जो भी मैं रक्षा करूंगा जो भी नस्य रक्षा करूंगा मैं आपको ऊपर लेकर जाऊंगा ये पुष्टि मार्ग वो दया का मार्ग है जो सारे वैष्णव संप्रदायों का सार वही है हम निस्सहाय हैं बिना कृपा के हम बेकार हैं हम कृपा को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं बनाते वो कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन कभी कभी जो हम प्राप्त करते हैं भक्ति के अभ्यास से जो फल मिलते हैं वो हमारे वो हमें अभिमानी बना के हमें पथ भ्रष्ट कर सकते मैं महान भक्त हूँ और वही इंद्र को हो गया और कृष्ण ने ऐसी सुंदर लीला की जो सब कुछ इंद्र को अर्पण करना था वो गोवर्धन पर्वत को अर्पण कर दिया ब्रजवासियों के लिए जो इससे आप खुश रहते हैं वही हमें चाहिए हमारे सबके लिए सबसे बड़ा सुंदर उत्सव है जो कभी किया गया दुनिया के हर एक मंदिर में आगे वाले 5000 साल के लिए नृत्य होता है गीत होता है पर्वत होता है गोवर्धन पूजा मनाई जाती है लेकिन इंद्र के लिए वही वो दवाई थी जो आवश्यक थी सबसे पहले उसके हृदय के सारे अनर्थ बाहर आ गए सबके सामने प्रकट हो ईश्वर का महान राजा वो लोग जिसको सब बड़ा महान मानते भक्ति में आगे मान रहे थे जो अपने आप को आत्माराम मान रहे थे अपने तरीके से कृष्ण जानते हैं कि कैसे बीमारी कहाँ पर है और कृष्ण वहीं पर उस अहंकार के पास उसकी बुद्धि को खो बैठ वो पागल की तरह बन गाय को मारने लग बछड़ों को मोर गोपी और गोप को मारने के लिए तैयार हो गए ये 7 साल का बच्चा जो है ये भगवान जो मेरी महिमा मेरी प्रसिद्धि जो मेरा है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं सब लोग देख रहे थे इंद्र जो है पागल व्यक्ति है कृष्ण विराट रूप धारण कर सकते थे इस तरीके से कर सकते उसके इंद्र के सारे अभिमान को नष्ट करने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को जैसे कि छोटा बच्चा से एक कुकुरमुत्ता को उठाता है जैसे बच्चा मैंने देखा है 2 साल के बच्चे भी एक ऐसे कुकुरमुत्ता को उठा लेते ऐसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और उनको धारण किया शरीर का सबसे कमजोर अंग जो है वो उंगली होती उस उंगली के नोक के ऊपर 7 दिन और 7 रात्रि और इंद्र जो है एक दाने को भी हिलाने से उसमें से पेड़ से पत्ती को भी नहीं हटा सके और गोवर्धन भाव विहलता कृष्ण के उंगली से स्पर्श करके गोवर्धन को कुछ पता ही नहीं चला जो तूफान लग रहे थे गोवर्धन पर कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ जो गोवर्धन पर जो जानवर थे हालांकि बरसात पड़ रही थी और जानवर जो बहुत खुश थे नृत्य कर रहे थे कृष्ण जो है गिरिराज को इतनी शक्ति दे रहे थे गिरिराज के संपर्क में आने से वो बहुत प्रसन्न थे और बादलों की तरफ देख रहे थे, उनके लिए बहुत सुंदर स्नान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। और गोवर्धन के एक स्थान है, हम थोड़ा आगे जाके फिर वापस आएंगे, जहाँ पर इंद्र अपने पूरी तरह से पराजित होने के बाद किसी को बात नहीं कर सके, वो खा नहीं सके, कुछ सो नहीं सके, वो इतने दुखी हो गए, समझ आया कि अपने आप को मूर्ख बना और उससे भी मूर्ख, उसका पता चला कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैंने कृष्ण को मारने का प्रयास, कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं। एक भक्त का लक्षण, जब कोई गलती करते हम यही नहीं सोचते कि उसे बहाने नहीं करते, उससे सीखने को मिलता, अब नम्र बन जाते। इंद्र यह महान भक्त है, ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन कृष्ण ने उस गलती को सुंदर उत्सव मनाया। सारे ब्रजवासी जो सुंदर लीला करने लगे कि गोवर्धन पे दिन रात, लेकिन इंद्र को समझ में आया कि मैंने गलती की, वो इतने प्रयासित करने लगे, उनको पता नहीं था क्या करें। अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने कहा कि तुम मूर्ख हो इंद्र, तुमने क्या कर दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो आपकी मदद कर सकते हैं। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बोले कि मैंने भी गलती की थोड़े दिन पहले, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सुरभि जो गायों की माता है, वो कृष्ण गायों से प्रेम करते हैं और गाय कृष्ण से करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी माफी हो जाए, तो आप उन शुद्ध भक्तों के पास जाओ जो कृष्ण से प्रेम करते हैं। अगर वो प्रार्थना करते कृष्ण को माफ करने, फिर कृष्ण आपको माफ कर देंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। काली है बहुत असुरिक व्यक्ति था, उन्होंने सब गोपों को मार दिया, कृष्ण के बच्चों को मार दिया, यमुना के पास सरोवर में उसने जहर भर और उन्हें पी लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और कई पक्षी जो ऊपर जा रहे वो भी गिर के मर गए, और सारे पेड़ जो वृंदावन के थे वो भी मर रहे थे। वो बहुत ही असुरिक व्यक्ति था। और कृष्ण ने प्रदर्शी डाली, सब मरे हुए मित्रों को जीवित कर दिया। आध्यात्मिक रूप से हम सब मरे हुए हैं, लेकिन मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु की तरह कुछ होता ही नहीं, शरीर तो हमेशा मरा होता है। जो आत्मा जो शरीर को जीवन देता है, जब आत्मा शेष छोड़ के जाते हैं तो आत्मा की मृत्यु नहीं, वासन से जीना नहीं, यथा भी आत्मा जो है दूसरे कपड़े को स्वीकार करते, शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु जो वो सब तत्वों में मिक्स हो जाते हैं। ये तो परिवर्तन है। मृत्यु जो है वो भूल का अनुभव है। इस भौतिक दुनिया में हम अपने शाश्वत प्रेम को भूल गए। हम कौन है हम भूल गए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से दुनिया में हर एक व्यक्ति जीवित मरे हुए के समान है। तो कैसे जागृत होने हमारे जीवन को, जब कृष्ण हमारी हमारे पर कृपा दृष्टि करते तो हमारे जीवन वापस दे देते हैं। कृष्ण ने सरोवर में छलांग लगाई और खेलने लगे। कृष्ण छोटे बालक वो खेल रहे थे और बड़े लहरें पैदा कर रहे थे और कालिया जिसके बहुत सारे फन हैं, जो बड़ा विशाल सर्प था, वो ये सहन नहीं कर सका कौन है जो मेरे सरोवर में प्रवेश करने का प्रयास कर। उन्होंने कृष्ण पर आक्रमण किया, कृष्ण को काट दिया और कृष्ण के आसपास अपने पंजे फैला दिए। कृष्ण छोटे से बालक है, काली अजय बड़ा विशाल सर्प है। जब हम गोवर्धन पर्वत के रात्रि में जाते हैं, जब हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, श्यामदास प्रभु धनुर्धर महाराज को स्वागत, श्यामदास प्रभु को भदोल महाराज को बता रहे थे और मोहन जी ब्रजवासी भी यहाँ पर हमारे ग्रुप को बता रहे थे। एक काला सर्प कोबरा उनके पार किया जब परिक्रमा कर रहे थे रात के समय। फिर एक काला कोबरा आपके पास पहुंचता है, आपकी क्या भावना होगी? दो इंच स्टिक है, छह फीट लंबा होगा, छोटा सा सांप, लेकिन कालिया बड़ा भयानक बड़ा सांप था, काले हजारों लाखों सांप के जहर था। हमें कृष्ण को अपने पंजे में घेर लिया, सारे गोपाल बछड़े वो कृष्ण के निस्सहाय भाव में देख रहे थे और वो सब बेहोश हो गए। यशोदा और नंद अमंगल के चिन्ह देख रहे थे, सोच रहे थे कृष्ण को क्या हो रहा था। वो दौड़ते हुए और बलराम जी आए दौड़ते, और उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है कालिया के पंजे में है। कृष्ण ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो निस्सहाय हों, एक छोटे बालक की तरह निस्सहाय, जो कि कालिया के भयानक पंजों में और श्वास और श्वास से जहर निकल रहा था। यशोदा माया जाकर दौड़ना चाहते थे कालिया की तरफ, लेकिन सब गोपियों ने उनको रोक दिया। नंद बाबा और सब ये कृष्ण को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो सहन नहीं कर सके कृष्ण स्थिति में, तो बलराम जी ने उनको रोक दिया। बलराम जी ने कहा, जब मैं शेषनाग के रूप में आया तो मेरे साथ कृष्ण ऐसा नहीं खेलते, कृष्ण के लिए कोई खतरा नहीं। तो ये छोटे से ये पानी के हिसाब से कृष्ण को क्या डर है? ये बलराम की दृष्टि थी। और ब्रजवासियों को इतनी चिंता में डालने के बाद उनके भाव को बढ़ाते हुए, उनके प्रेम को बढ़ाते हुए कृष्ण ये करते हैं, क्योंकि प्रेम जो है भाव, ये भाव जो है वो बढ़ता रहता है। और कृष्ण ऐसी स्थिति में डालते हैं कि कभी कभी, कभी अच्छी स्थिति में, कभी कठिनाई में, कभी बहुत दर्दायक स्थिति में, लेकिन ये दर्दायक स्थिति बीच वो सब भाव विवल है, क्योंकि वो हमारा मग्न होने के भाव को बढ़ाते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाते हैं। सारे ब्रजवासी इतने मग्न थे, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, वो बेहोश हो रहे थे, उठ रहे थे, बेहोश हो रहे थे। और वो जब मृत्यु के स्तर पे थे, कृष्ण को विस्तारित किया और फिर काली नाग के ऊपर नृत्य करने लगे, एक एक फन के ऊपर नृत्य करने लगे। और कितना सुंदर नृत्य था, कृष्ण का नाम है वृंदावन नटवर। वृंदावन के सबसे सुंदर नृत्य करने वाले। हम नृत्य करना पर कभी जमीन पर कोई सरफेस अच्छा नहीं होता, जब फ्लोर अच्छा नहीं तो हम सोचने के नृत्य नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण है जो उनको कुछ उनके नृत्य कोई नहीं रोक सकता। वो कार्य नाग के फणों के ऊपर नृत्य करे और जो अप्सरा है जो ऊंचे लोग के वो भी नीचे आ रहे थे, वो कृष्ण सीखने के लिए आ रहे थे, वो काली नाग के ऊपर नृत्य कर रहे थे। उनके चरण कमल इतने कोमल हैं कि यशोदा माई वो बहुत दुख होते दिन के समय चिंता कि कृष्ण के छोटे चरण कमल जो कंकड़ पे गिरे, जो कांटे पे गिरे, उनके उनको दर्द हो सकता है। इस दुनिया में सब चीजों से बहुत ज्यादा कोमल है कृष्ण के चरण कमल, जो सब कोमल चीजों में ज्यादा कोमल, मक्खन से ज्यादा कोमल, जो जो कमल के पत्तियों से भी कोमल, तमाल वृक्ष की पत्ती से भी छोटे, इतने कोमल कृष्ण के चरण कमल हैं। और गोपियां जो है वो सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण के चरण को अगर अपने शरीर के कोमल भाग में रखूं तो उनके चरण कमल की तुलना में इतने कठोर हैं कि कृष्ण को तकलीफ होगी। ये उनके चरण कमल उनके भक्तों के प्रति ये यथा माम प्रपद्यत। कृष्ण हमें भाव के अनुसार आदान प्रदान करते, हर बार जब कृष्ण चरण कमल से वैसा लगता है कि वज्र का प्रहार हो रहा है। जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो उनके सिर के ऊपर इतना तकलीफ हो रहा और ब्रजवासी सबको, ब्रजवासियों को बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा नृत्य कर रहे और बहुत मीठे तर में नृत्य कर रहे कालिया नाके पर नृत्य कर रहे थे तो कृष्ण उसको कुचल रहे थे और उसका सारा जहर निकल रहा था। मैं उसकी नकल नहीं करूंगा। और सारा जहर निकलने के बाद सारा खून निकलने लगता था, और खून निकलने का जब वो बिल्कुल दूसरा सिर आता है कृष्ण उसको बजने करने से कृष्ण देते हैं। और जब तक कि कालिया नाग के सारे सिर नष्ट हो जाते और कालिया जो बिल्कुल निशाय अवस्था में निशा बस वो समझ में आ जाता है उसको कि मैं नष्ट हो गया। और पूरे जीवन में पहली बार वो नम्र बन गए और उस समय नाग पत्नियां कालिया नाग के पत्नियां जो कृष्ण के महान भक्त थे वो हाथ जोड़ के हमारे पति जो है बहुत क्रूर व्यक्ति हैं, आपके भक्त कहाँ पर, जब आप उसके ऊपर नृत्य कर रहे थे हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छे उसकी मृत्यु हो जाए, पहले हम सोच रहे थे उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे जीवन में पहली बार वो नम्र बन के आपका शरण ग्रहण करना चाह रहे हैं, इसलिए आप अपना आश्रय उनको प्रदान करो। वो सांप है और शाम स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं और अपने स्वभाव के कारण से आपकी कृपा से वही चरण कमल जो कि ब्रह्मा और शिव और सारे लक्ष्मी जिसको प्राप्त करने का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, जिसके बड़े ऋषि मुनि योगी भी प्राप्त करना जो तरस है, बहुत जीवन तपस्या कर उसके ऊपर थोड़ा देखने का प्रयास कर, वो वही चरण कमल जो है वो बार बार नृत्य कर रहे हमारे पति पर, वह शुद्ध बन गए, वह नम्र बन गए हैं। अपने उनके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। और कालिया उनके पत्नी को सुन रहा था और फिर कालिया ने सुंदर प्रार्थनाएं के कृष्ण को समर्पण की प्रार्थनाएं अर्पण की। उसका आश्रय क्या था? ये नाग पत्नी की प्रार्थना ही थी। उनके पत्नियां जो कि महान भक्त थे और उससे जो है जिससे उसको क्षमा कर देगा, उसके सारे अपराध माफ कर दिए। पुराणों के अनुसार कालिया इतने वृंदावन में वो वृंदावन छोड़कर गए, कभी कभी गरुड़ जी पर सवार होने के बजाय कृष्ण कालिया नाके पर सवार होते हैं, कृष्ण का सेवक बन गए। जगायर मधाई की लीला में हम देखते हैं वो मर्डरर थे, चोर थे, उन्होंने घरों में आग लगाए थे, लोगों के गलत स्त्री संग कर रहे थे, शराबी थे, वे जानवरों की हत्या कर रहे थे, उनका खून पी रहे थे, सारे प्रकार के बुरे कार्य कर रहे थे। उनको किसी के प्रति कोई आदर का भाव नहीं था और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र लेकर उनके सिर काटने के लिए तैयार थे। और नित्यानंद प्रभु जिसके ऊपर उन्होंने मारने का प्रयास किया था, नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की उनसे कृपया करके उनको क्षमा कर दो। दूसरे अवतारों में हम असुरों को मारने के लिए, लेकिन चैतन्य और नित्यानंद के लिए हम किसी असुर को मारने के लिए, हम असुरी प्रवृत्ति को नाश करने के लिए आए और उनको प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए आए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई और मधाई को कृष्ण प्रेम मिल गया, जो जीवन का सबसे अच्छा लक्ष्य होता, जो कि सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते थे नाम के द्वारा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
ब्रह्मा जी जो है शुरुआत से रहे, ब्रह्मांड के अंत तक रहेंगे। आप जानते हैं कि इन्होंने इंद्र को बताया सुरभि के, कृष्ण सुरभि से प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कृष्ण आपको क्षमा कर दें। ये शाश्वत सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद हमें कहते थे कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लादिनी शक्ति भी हैं, वो सारे सारे जीवात्माओं की माता हैं। अगर हम राधा रानी का आश्रय लेते उनका माँ के स्वभाव के कारण, उनके सेवकों का सेवक बन के सच्चे इरादे से अपने आप को सुधारने के लिए और जो जिनसे वो प्रेम करते हैं उनकी सेवा करें, तो राधा रानी कृष्ण से कहेंगे कि इसको, इस भक्त को क्षमा कर दो, जो भी उसने किया उस भक्त को स्वीकार कर, अपने प्रेममय सेवक के रूप में स्वीकार, अपना प्रेम इस भक्त को प्रदान कर दें। और कृष्ण निश्चित ही कृष्ण उनको स्वीकार करें, राधा रानी के भाव को स्वीकार करें। शिला प्रभुपाद जी ने प्रश्न, प्रभुपाद जी से हमने पूछा कि हमारी क्या योग्यता है, ये वृंदावन के लीला को हम कैसे समझ सके। प्रभुपाद जी बोले आपकी कोई योग्यता नहीं है, और बड़े नम्रता से ने कहा कि मैंने आपकी योग्यता बनाई है, क्योंकि जब हम दासों के दासों के दास राधा रानी के, राधा रानी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और फिर कृष्ण स्वीकार करते हैं, ये भगवान का जो है मात्र प्रेम। जब हम महामंत्र गाते हैं हरे हरे, मतलब हम राधा रानी को पुकार रहे हैं, हरा को, कृष्ण का नाम हरि है, ये हमारे हृदय के सारे अमंगल को दूर कर देते हैं और फिर हृदय को चुरा लेते हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग से हमारी चेतना जो है वो मथी जाती
है,
वो हमारी जो हृदय है वो मक्खन की तरह बना जाती, फिर भगवान हरि माखन चोर जो है वो हमारे हृदय को चुरा लेते हैं। श्री राधा रानी हरे है क्योंकि वो कृष्ण के भी हृदय को चुरा लेते हैं। पहले हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, जब वो प्रसन्न हो जाती है तब फिर कृष्ण स्वाभाविक रूप से हमें स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम,
हरे हरे।
ये सिद्धांत है जो ब्रह्मा जी समझ गए। यहाँ पर इंद्र ईश्वर के राज, ये घुरबी गाय के पास आ रही, उनकी दया मांग रहे हैं। और सुरभि गाय बोले कि मैं मदद करेंगे, हम ब्रजभूमि जा, और वहाँ पर एक स्थान है सुरभि कुंड जहाँ पर हम कुछ क्षण रुके थे। मैं बोलना चाहता था, मैं चाहता हूँ धनुर्धर महाराज जो सीनियर गुरु है, वो इतने मग्न थे धनुर्धर भक्ति के भाव में, वो कुछ बोले नहीं। यहाँ पर विश्वरूप प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से बोला, वो सुरभि कुंड में थे, सुरभि कृष्ण के पास पहुंच और बोले कि आप यहाँ पर रहो, मैं बोलूँ कृष्ण से। और सच्चे प्रामाणिक दया के इंद्र के प्रति पता था कि कृष्ण ने क्या किया उनके गायों को, इंद्र ने कैसे उनके स्वामी को व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उनके लिए काफी व्यक्तिक इंद्र ने जिनके स्वामी करने का प्रयास, गाय और बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया, और सारे भक्त है जिनके नंद और यशोदा के, जब उसने देखा कि इंद्र प्रायश्चित के भाव में है, उसने कृष्ण से निवेदन कि उनको स्वीकार करें, और कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। अगर पतित जीव सोचता है कि मैं कृष्ण को पास पहुंच सकता हूं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि वास्तव में क्योंकि हमारे और कृष्ण के बीच में अहंकार की इतनी ज्यादा दीवारें हैं, हमें कितना कम पता है, पता है कि अगर कम मालूम है कि इसका मतलब बहुत सारी दीवारें बिल्कुल अज्ञान में होता है कि तब आपके सामने की दीवारें दिखाई नहीं पड़ती, जैसे प्रकाश आते रहते हैं तब और देखने लगते हैं। इंद्र को पता चल गया सुरभि और कृष्ण की समझ गए कि मैंने क्या किया है। हमें कृष्ण के भक्तों के पास जाना चाहिए और उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहिए। सबसे बड़े मुक्ति के दरवाजे खोल दिए। कृष्ण ने आकर कृष्ण ने प्रार्थना अर्पण की कृष्ण और छोटे बालक, फिर इंद्र ने प्रार्थना अर्पण की। फिर इंद्र ये सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को जहाँ चाहते थे कि कृष्ण मेरे स्वामी, मैं उनका अभिषेकम करना चाहता हूँ। और सुरभि ने कहा हम और किसी इंद्र की परवाह नहीं करते, आप ही हमारे इंद्र। और वो गोविंद कुंड में था। सारे ब्रह्मांड को एक वाक्य है कि कृष्ण हमारे सब स्वामियों के स्वामी, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, वरुण, अग्नि, यमराज, कुबेर और सब अप्सराएं, गंधर्व, सारे ऋषि और मुनि, वो सब अलग अलग भेंट लेकर आए कृष्ण को अर्पण करने के लिए। सुरभि अपने दूध से, सुरभि गाय से उन्होंने कृष्ण का अभिषेक किया। और ऐरावत ये सफेद हाथी इंद्र का था, वो आकाश गंगा से पानी लेकर जो उच्च लोकों के गंग और कृष्ण को अभिषेक कराया। तो 108 कुंड जहाँ पर कृष्ण को और उसमें से कुछ अभी भी हैं, बहुत सुंदर आरती है और कृष्ण को गोविंद के रूप में राज्य अभिषेक है। उनका शाश्वत नाम गोलोक में एक दिव्य आवाज से प्रकट हुई, जिससे कि उनका नाम हो गया गोविंद, जो इंद्रियों को, गायों को और धरती माता को प्रसन्नता प्रदान करती और जो हमारे इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते। सर्वपादि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। हमारे इंद्रियों को, सब इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगाने, हम उससे पूर्णतः शुद्ध बन जाते। ये सारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, जो अभिषेक से जो पानी प्राप्त हुआ उसी को गोविंद कुंड कहते हैं। सारे देवता जब चले गए तो सब बालक वहाँ पर आए, सब देखा और सोच रहे थे, बलराम जी को साथ में रखा, उसको आरती करने लगे, चमर करने लगे, कृष्ण से मजाक कर रहे थे। उनको भगवान नहीं मानते थे, मित्र नहीं मानते। उनके लिए तो खेल था। और देवताओं ने जब देखा कि कैसे गोप कृष्ण के साथ खेल रहे, जो घनिष्ठता उनका, जो प्रेम था, देवता और ऋषि समझ गए कि उनके तुलना में हमारे पास तो कोई प्रेम है ही नहीं, ये वृंदावन है। फिर नंदर यशोदा और उन्होंने फिर आरती की कृष्ण वात्सल्य रस वात्सल्य प्रेम में, ये गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड के तट के ऊपर है चैतन्य चरितामृत के अनुसार कि माधवेंद्रपुरी वो एक छोटा ग्वाल बाल आया था उनके लिए दूध लेकर आया था और बोले कि मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। कृष्ण वेश बदल के आए थे, कहने लगे मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता और कुछ लोग कुछ मांगते हैं, कुछ नम्र होते हैं जो भीख नहीं मांगते, मैं उनके लिए लेकर आता हूँ। क्योंकि आसपास के जो स्त्रियां थी वो गोविंद कुंड आ रहे थे पानी लेकर आते, और उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर बैठकर पूरा दिन जप करते रहे, मैं आपके लिए दूध लेकर मैं बर्तन लेने के लिए वापस लौट के आऊंगा। मैं दूध पी लिया, वो बिल्कुल नशे में, बहुत विशेष दूध। ये संसार के नशे की तरह जो प्रेम के कृतज्ञता से नशे जो भक्ति में, उन्होंने तो बालक लौट कर आए और बताया, उन्होंने गोपाल जी का विग्रह बताया गोविंद कुंड के तट के ऊपर और श्यामदास प्रभु श्री संप्रदाय के शास्त्र और कथाएं कैसे श्रीनाथ जी प्रकट हुए। श्रीनाथ जी अचिंत्य है, कई लोगों को अलग अलग रूप में प्रकट हो सकते हैं, बहुत शक्तिशाली वे भगवान के अलग अलग भक्त विस्तारित स्वरूप। गोविंद कुंड से थोड़ा पास में ही एक क्या चंद्र सरोवर, वसंत ऋतु में भगवान राधा रानी के साथ सखी और मंजरियों के साथ गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत में बैठे, शरद कार्तिक महीने में रासलीला वृंदावन में होती है वंशीवट में, वसंत ऋतु के समय गोवर्धन में लीला होती है। ये लीला चंद्र सरोवर में और बहुत सारे लीलाएं जो कुंज में हो रही है, जो गोवर्धन में हो रहे हैं, ये घनिष्ठ स्थान है जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। और क्योंकि कृष्ण जो चंद्र के वंश में प्रकट हुए, तो पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुआ, कृष्ण के प्रेम का आदान प्रदान करने के कृष्ण चंद्रमा ने अपनी किरणों से अमृत भर दी, जिसका अमृत जो है वो रासलीला के और ज्यादा आनंददायक मनोहर रस प्रदान करेगी। और चंद्रमा अपनी चंद्रमा की किरण जो उसमें भाग ले रहा था, और चंद्र सरोवर पर रासलीला हमेशा हो रही है, और वहां पर महान संत सूरदास ने भजन किया था और उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं भी वहीं पर लिखी थी। वहां से एक स्थान है पैठा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और चैतन्य चरितामृत में लीला के एक बार रासलीला के समय कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी और गोपियों को छोड़कर चले, उनसे ज्यादा छिप छिप गए। संभोग और विप्रलंब, ये प्रेम के आदान प्रदान जब मिलन होता है, जब वो गहरे हो जाता है, हम अनुभव करते हैं। और विरह में जब फिर से मिलन होता है, फिर अलग हो जाता है। इस तरह संभोग और विप्रलंब जो वो एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, वो उनसे अनुभव करने के कृष्ण और सारे भक्तों के प्रेम को। कृष्ण छिपे हुए थे और गोपियां उसके लिए सुन रहे थे, और फिर उन्हें ढूंढ लिया। और कृष्ण पाइथन में एक पेड़ के नीचे बैठे, और कृष्ण वहीं पर थे। जैसे गोपियां आ रहे थे, कृष्ण ने अपना चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट कर दिया। और गोपियों ने जब उसकी देखा कि वो नारायण है, जो परम सत्य है, जो भगवान है, जो सारे दुनिया के, जो सब चीजों के स्रोत है, जो सारे ईश्वरों के ईश्वर है, वो निराश हो गए, क्योंकि नारायण के साथ रासलीला नहीं कर सकते। कभी अपने पेंटिंग या फोटो देखा कि चतुर्भुज नारायण के साथ गोपियां डांस कर, ये वो उनका भाव नहीं नारायण, तो गोपियां जो है भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े, उन्होंने प्रणाम किया। और नारायण बोला कि आपको जो आशीर्वाद चाहिए, आपको क्या आशीर्वाद, क्योंकि भरद्वाज सब आशीर्वाद देने वाले कि हमें क्या आशीर्वाद चाहिए, कि हमें बताओ कृष्ण कौन सी जगह रस्ते हुए। और नारायण ने अपने चार हित से बताए कि कृष्ण इस दिशा में गए, गोपियां वहां चले गए, कृष्ण के लिए निकल पड़े। ये जो ऐश्वर्य का भाव है, जो भगवान से प्रेम करना, क्योंकि भगवान जो सारे सबके ईश्वरों के ईश्वर है, जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी है, जो आध्यात्मिक जगत के राजा है, जो वृंदावन भक्ति के दृश्य देखा जाए, उससे यह संबंध में बाधा आ जाती है। वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब शुद्ध भक्त और जब भगवान का गुणगान कर, जब वेदों से गाते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कृष्ण को 10 लाख गुना ज्यादा लाभ तब होता है जब वैदिक मंत्रों से ज्यादा लाभ होता है, जब ऋषि मुनि गाते हैं और देव गाते हैं, 10 लाखों गुना ज्यादा लाभ होता है। जब ब्रजवासी गोपियां कृष्ण को डांटते हैं कठोर शब्दों से, वह वृंदावन है। ये रहस्य है, सारे शास्त्रों का जो है सार यही है। गोपियां जानते थे कि नारायण कौन है, वो उनसे प्रेम करते हैं, वो भगवान के इच्छा यही है कि कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करना, जो उनके प्रेमी हैं, जो उनके मित्र हैं, वो दौड़े कृष्ण को देखने के लिए। और फिर श्रीमती राधा रानी आए और उन्होंने भगवान नारायण से पूछा, आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। और राधा ने कि कृष्ण कहाँ पर हैं, और श्रीमती राधा रानी की तरफ देख और राधा रानी उनके हृदय के प्रेम का अनुभव करने से कृष्ण कृष्ण प्रेम से जीत लिए जाते हैं। कृष्ण ने अपने वेश को छिपाए रखने का प्रयास किया, लेकिन राधा रानी की उपस्थिति में उनके दो भुजाएं जो हैं, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज से, वो जो चतुर्भुज में शंख चक्र गदा पद्म का रूप था वो पिघल गए और उनकी मुरली आ गई उनके हाथ। श्री राधा के प्रेम से जीत लिया और वो राशिदा को जारी रखे गोवर्धन पर्वत चंद्रमा की किरणों में। वहाँ पर पर्वत पर एक मंदिर, इसका नाम है डोका दाऊ जी, और ये मंदिर है वो बलराम जी की मूर्ति है जो कृष्ण बलराम जी गोवर्धन पर्वत पर दूर रहे थे और वो देख रहे थे, उन्होंने चंद्र सरोवर की तरफ वो देख रहे थे और राक्षसथली को देख, और उन्होंने बहुत सुंदर राधा और गोपियों की लीलाओं को देख, कृष्ण की लीलाओं को देख, वो इतने आश्चर्यचकित हो वो नीचे देखने वैसे वो झुक के वो देखने लगे, वो इतने मग्न हो गए, इतने भाव में विवल हो गए, वो बिल्कुल मग्न हो गए कृष्ण को देख, कृष्ण के सुंदर नृत्य को देखकर, और इतने मग्न होने में कि देखा कि कृष्ण पर ध्यान लगा रहे थे और उनका सफेद वर्ण जो कि बादल वसंत बदल की तरह जो उनका सफेद कलर है वो काला बन गया बरसात के बादल की तरह, और कृष्ण मग्न होने के कारण उनको कृष्ण का ही वर्ण मिल गया। वहां पर दोकादाव जी का मंदिर है जो कृष्ण की शाश्वत लीला को देख रहे हैं। जब हम परिक्रमा में आगे जाते हैं, शंकरशन कुंड जो बलराम जी को भेजा, बलराम जी के बाद जो ब्रज भूमि के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, जिससे कि प्रेम कृष्ण सारे गोपियों की लीला का आदान प्रदान कर सके, और फिर हम आते हैं, हम अप्सरा कुंड पहुंचते हैं, और अप्सरा कुंड के पास में पुंचरी नवल कुंड है, या पुंचरी कुंड भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार हम पढ़ते हैं 24 अवतार भगवान के, कृष्ण के 24 अवतार मत्स्य, वराह, नरसिंह, रामचंद्र, वे सब शाश्वत रूप से अपनी लीला कर रहे हैं अप्सरा कुंड के तट के ऊपर, ये सब लीला कर रहे हैं। जब कृष्ण अपनी गाय चराते थे गिरिराज जी के ऊपर अपने मित्रों के साथ, गोपों के अप्सरा कुंड के सामने, वो अपने अलग अलग अवतारों को प्रकट करते थे उनको सुख प्रदान करने के लिए। हालांकि कृष्ण कभी वराह देव बन जाते, कृष्ण खेलते खेलते और कृष्ण उसको भगवान की तरह पूजा करने के बजाय वो इन रूपों में भी कृष्ण के साथ खेलने लगे। कृष्ण ने राम का रूप स्वीकार, ब्रिज बनाने के लिए, और सारे गोप जो है बंदर बन गए और कृष्ण को मदद कर रहे थे राम के रूप में, और बलराम जी लक्ष्मण बन गए और बहुत सुंदर ब्रिज बनाया। जब कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला में ऐसा बताया गया गोपियों के जो कृष्ण के प्रति के प्रेम के कारण साधारणी और गोपी उनका शरीर जो है वह बहुत नहीं है। उनका शरीर जो है प्रेम का स्वरूप है। ये दुनिया के जो अध्यात्म जगत के सबसे बड़े सत्यों का एक रहस्य ब्रह्म संहिता में बताया गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण जो परम ईश्वर सारे ईश्वरों के, उनका शरीर शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से पूर्ण है। इस भौतिक दुनिया में शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं। आत्मा जो है वो एक शरीर में रह रही है जो कि आठ तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार से बना हुआ। लेकिन भगवान की आध्यात्मिक धाम में शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। शरीर जो है वो प्रेम के आत्मा के प्रेम को प्रकट करता है, ये उस व्यक्ति के प्रेम का ही रूप है। गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम है रासलीला में, कभी कभी उनका हृदय पिघल जाता, इतने प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि उनका शरीर भी पिघल जाता है और उनके और कृष्ण का शरीर भी पिघल जाता रास के रूप में, सार और रास। और गोपियों का जो प्रेम है अप्सरा कुंड बन गया और कृष्ण का प्रेम जो है नवल कुंड बन गया। जब हम इन स्थानों में जाते हैं उनको देखते ही हमारी प्रार्थना और भक्ति करने से और कुछ बूंद अर्पण करने से और स्नान करने से हम वास्तव में हम शुद्ध बन रहे हैं, हमको आशीर्वाद मिल रहा है। राधा और कृष्ण और गोपियों के प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं कि वो हमें शाश्वत रूप से अपने रास लीला को कर रहे हैं अप्रकट स्तर के ऊपर जो शाश्वत स्तर है नवल कुंड और अप्सरा कुंड के तट के ऊपर। हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि गिरिराज गोवर्धन का आकार एक मोर की तरह है और उसके अलग 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 आचार्य समझाए कि किस भाग कौन सा है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर के अनुसार मुख जो है कुसुम सरोवर उसका मुख है, उनकी आंखें हैं राधा कुंड और श्याम कुंड और गर्दन जो है वह दान घाटी है और जो पूंछ है वह नवल कुंड पूछ रही है। जब हम पास जाते हैं नरसिंह देव भगवान का भी एक मंदिर आता है, भक्ति विनोद ठाकुर की बताते हैं कि कैसे गौड़ीय वैष्णव नरसिंह भगवान की पूजा कैसे करते हैं। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज के लिए बहुत बड़े बाधा के लिए थे सब के लिए, लेकिन हिरण्यकश्यपु हमारे हृदय जो अनर्थ है हमारे स्वार्थ की इच्छा है, हृदय की ईर्ष्या। हम भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि ये सब बाधाओं को दूर करें कि जिससे कि भज भक्ति जो स्वाभाविक वो श्री श्री राधा और गोपीनाथ को अर्पण किया जा सके। हम नरसिंह मंदिर को पार करके और फिर हम पुंछड़ी का लोटा बाबा के मंदिर में आते। वृंदावन में बहुत ही मशहूर मंदिर है, आप सब ने दर्शन किए लोटा बाबा सब परिक्रमा में किया। लोटा बाबा जो है गोवर्धन इलाके से, और उन्होंने कृष्ण बलराम के लिए बहुत सुंदर भोग बनाए और वेट करते कृष्ण कब। लेकिन उस दिन कृष्ण और बलराम अखरू जी के साथ मथुरा जा रहे थे। लोटा बाबा ने बताया, मैंने आपके लिए प्रसाद बनाया है, कृपया प्रसाद ग्रहण करें। और कृष्ण ने कहा, मैं लौट कर आऊंगा, कल के बाद वाले दिन मैं लौट के आऊंगा। लोटा बाबा ने कहा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं कुछ पीऊंगा नहीं, जब तक आप लौट कर नहीं आऊंगा मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा, मैं छीलूंगा ही नहीं। और अभी भी वो वहीं पर बैठे बिना हिले वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण के लिए कृष्ण लौट कर आएंगे। इस भाव से बैठ श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भाव प्रकट किए, विरह में जो प्रेम है उसका भाव प्रकट। शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नम। मेरे प्रिय स्वामी, आपसे विरह के कारण एक क्षण भी जो है वो 12 साल के समान और से ज्यादा लग रहा है। आपके दर्शन के बिना ये पूरा जगत जो है, ब्रह्मांड जो है, वो बिल्कुल शून्य नजर आ रहा है। ये विरह में प्रेम है। और हमारे आचार्य हमें बताते हैं, ये सबसे बड़ा भाव है, ये प्रेम का सबसे गहरा स्वरूप है। लोटा बाबा ने हमें स्वीकार हमें सिखाया है ये सब्रता बनाए रखना। जैसे कि आप जान सकते कि मैं परिक्रमा से मैं कहानी सब अलग हो जाता हूँ, लेकिन क्या किया जाए। मेरा हृदय जहाँ जाता है वहीं पर मैं बोलने लगता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुकुंद दत्त जी, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हमारे गौरांग सब आशीर्वाद और दर्शन दे रहे, सारे भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, सिर्फ मुकुंद को नहीं दे रहे थे। लेकिन कोई कोई चीजें, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं था किस तरीके से मुकुंद व्यवहार कर रहे थे। सारे भक्त जो सारे इच्छे उनके इच्छाएं पूर्ण हो रहे थे। मुरारी गुप्त जो हनुमान जी के अवतार हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राम का स्वरूप प्रकट, मुरारी ने देखा कि राम के पास सीता और लक्ष्मण थे, और उन्होंने अपने आप को देखा कि मेरी एक पूंछ आ गई, उनको समझ में आया कि मैं हनुमान। इधर खोला बेचा को उन्होंने कृष्ण बलराम का रूप प्रकट किया, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन एक भक्त का स्वभाव है वो पर दुख दुखी होता, भक्त एक दूसरे से प्रेम करते, एक व्यक्ति को जो कृपा मिली है वो कम से कम उतना महत्वपूर्ण है जितना मैं महत्वपूर्ण। दया के जो है बरसात हो रही थी, सारे भक्तों के ऊपर बरसात हो रही थी, लेकिन एक बूंद भी जो है मुकुंद को नहीं मिल रही थी। तो श्रीवास जो है उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, आप मुकुंद पे दया करो, उसको कुछ भी सजा दो, उसको उसको उसकी अवहेलना मत करो। भगवान ने बताया कि मैं उसका मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। और मुकुंद ने सुना भगवान के सामने आने से घबरा रहे थे और हृदय जो है बिल्कुल चूर चूर हो गया, क्या कभी कभी क्या मुझे कभी भगवान के दर्शन होंगे। और श्रीवास बोले कि मुकुंद जब वो कीर्तन गाते हैं तो इतना जीवन प्रदान करते हैं हमारे हृदय को, उसने क्या किया कि उनको फिर से दर्शन होंगे। और भगवान ने बताया कि भगवान बहुत गरजते आवाज में बोले वो मेरे को देखेंगे 10,00,000 जन्म के बाद देखेंगे। जब मुकुंद ने ये सुना तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, वो नाचने लगे, वो नृत्य करने लगे, वो रोने लगे आनंद से कि सिर्फ 10,00,000 जन्म में मुझे भगवान के दर्शन होंगे फिर से। और भगवान ने जब देखा उसके प्रेम का स्वभाव कैसा है, हम चीजों को बहुत सस्ती मान लेते हैं, हम जपा कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मुद्रा यंत्र मंत्र तंत्र कर रहे हैं, 10 साल या 20 साल 30 साल या 40 साल के लिए, 50 वर्ष तक रहे हैं। और हम सोचने हमें कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, भक्ति क्या है, मैंने इतना सारा त्याग दिया, मैंने इतना किया और सब चीजें मेरे तरीका नहीं, मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे। रूप गोस्वामी बताते हैं शरणागति के लक्षण क्या है, उत्साह और धैर्य, एक के बिना दूसरा जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। अगर हम सब्र बनाए रखें हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम उत्साही बने रहते हैं और हम जब हमको प्राप्त नहीं होता हम आशा खो बैठते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम श्रद्धा खो बैठते हैं, हम सब त्याग देते हैं। कृष्णा मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपने मेरे लिए किया, ये भक्ति नहीं है। आश्री सेवा पाद रतम पे नश्तु माम, भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में कहते हैं समर्पण का मतलब क्या है कि मेरे भगवान अगर आप चाहें तो मुझे गले लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझे पर कुचल सकते हैं। मेरे स्वामी अगर आप चाहो तो मैं तो अगर आप मेरे हृदय को तोड़ सकते हैं मेरे सामने उपस्थित नहीं होकर, आप स्वतंत्र हो, जैसे भी आप करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, बिना किसी शर्त के मैं आपका सेवक हूँ। ये भक्ति है। मुकुंद नृत्य कर रहे थे सिर्फ 10,00,000 जन्म, क्या बिल्कुल छोटी कीमत जिससे भगवान का दर्शन होगा। वो इतने प्रसन्न थे, चैतन्य महाप्रभु उनके सुख को देखा और बोले कि मुकुंद को अभी तुरंत लेकर आ जाओ। और सारे भक्त मुकुंद के पास, भगवान आपको तुरंत चाहते हैं कि आप दर्शन करना चाहते। मुकुंद इतने ध्यान में थे, इतने सुख में थे, वो सोच रहे थे कि सिर्फ 10,00,000 जन्म के मुझे भगवान के दर्शन होने वाले, वो दुनिया में नहीं थे। वो नृत्य कर रहे थे, वो हरे कृष्णा गा रहे थे कि सिर्फ 10,00,000 जन्म मुझे प्राप्त है। बाकी भक्तों ने कहा कि अभी दर्शन वाले, वो बोले नहीं 10,00,000, बोले कि 10,00,000 जन्म। और फिर उनको उठा कर लेकर गए और भगवान के पास ले गए और भगवान ने उनके दर्शन प्रकट किए। और चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त से कहा कि मैं आपको दुनिया को दिखाना चाहता था आपके भक्ति के गुण क्या है। और मुकुंद इतने नम्र थे, उन्होंने प्रणाम किया और वो बोलने लगे मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मेरा आपके दर्शन करने का क्या लाभ है। कंस ने आपके दर्शन और वो सुखी नहीं थे, हिरण्यकश्यप ने आपको देखा वो भी सुखी नहीं, हिरण्याक्ष ने आपको देखा वो भी सुखी नहीं, शिशुपाल ने आपको देखा वो भी सुखी नहीं थे। हमारा लक्ष्य आपको देखना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको प्रसन्न करना प्रेम से। कुब्जा जो जो कुबड़ा कुबड़ी स्त्री उसने आपको दर्शन किया और वो खुश थे। सुदामा जो माली था उसने आपको देखा वो भी सुखी हुए। कंस को क्यों नहीं प्रसन्नता प्राप्त हुई? भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हमारे परम गुरु बताए कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो और कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करो जिससे कि कृष्ण आपको देखने में प्रसन्न हो। लोटा बाबा वो प्रेम की गहराई है। 5 साल बीत गए वो कुछ खाए नहीं कुछ सोए नहीं वो कृष्ण का इंतजार कर रहे। जो भी आप देंगे वो कृष्ण के लिए रख रहे हैं। और ब्रजवासी मानते हनुमान जी से अभिन्न मानते हैं क्योंकि हनुमान जी का भी वही भाव भगवान राम के लिए कुछ भी करने के तैयार रहना। और कृष्ण अपने आप हमारे सामने प्रकट होंगे जब हम प्रेम से सच्चे दिल से उनके नाम को पुकारते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
जय कृष्ण अपने आप को आज प्रकट करना चाहे या एक जन्म या कई लाखों जन्म में उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रेम है हम गाते रहेंगे हम श्रवण करते रहे श्रवणम कीर्तनम करते हम सेवा करते रहेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर वो चाहते हैं कि भौतिक दुनिया मेरी और नरक में चाहते हैं जो मुझे वैकुंठ में चाहते हैं चाहे वो गोलोक वृंदावन में चाहते हैं मैं किसी भी जगह में की सेवा के लिए तैयार हूँ। ये हमारी प्रार्थना है। गोपियां जो है रासलीला में उन्होंने ऐसे समर्पण प्रदर्शित किया। जब कृष्ण ने अपनी पंचम स्वर बनाया पंथीवट पेड़ के नीचे या रासतली में गोवर्धन में गोपियां जो है उन्होंने कुछ सोचा नहीं। जैसे नंद और यशोदा और जो गोप और गोपी है जैसे वो सब कुछ इंद्र को देने के लिए तैयार थे और वही ज्यादा गहराई में कृष्ण अपने घर अपने परिवार अपने सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गए। रात्रि में जंगल में चले गए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शरणागति। और वो सुंदर कहानी कृष्ण को सर दर्द था और नारद मुनि से कहा कि मेरे को अपने गोपियों के मेरे चरणों की धूल दे दो। उनके धूल लेकर नारद मुनि के नारद मुनि आपको पता नहीं कि अगर धूल दोगे तो आपको कृष्ण के सिर पे दोगे तो आपको क्या फल मिलेगा। और गोपियां बोली हमें मालूम है निश्चित है कि हमको नरक में जाना पड़ेगा अगर हमेशा के लिए भी नरक में जाना पड़े तो वो हमारा सबसे बड़ा सुख होगा। अगर उससे कृष्ण को एक क्षण का भी कृष्ण के सर दर्द कम हो जाता है तो हम ये खाली कविता नहीं है ये निस्वार्थ प्रेम है गोपियों का। हम ये प्रार्थना करते पूछ रही कलोटा बाबा को प्रार्थना करते कि ये प्रेम हमें प्राप्त हो समर्पण मुझे प्राप्त उत्साह के साथ सब्रता के साथ। हम और आगे बढ़ते हैं मणिकुंडली गुफा में पहुंचते हैं और गौण दृष्टि पिका के अनुसार ये राघव पंडित राघव पंडित चंपक लता सखी जो कि जो अष्ट सखियों में से एक है राधा रानी की जो उनके शाश्वत लीला में है और वह रघुनाथ दास गोस्वामी के परम मित्र थे राधा कुंड के ऊपर वहां पर और दूसरी गुफा में वो अपने भजन करते थे कृष्ण की लीला पर ध्यान कर रहे थे और हमेशा भगवान की लीलाओं में भाग ले रहे थे जैसे वो नाम गा रहे थे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे ये जो कृष्ण नाम जो है जो महामंत्र है वो भगवान के धाम से गोलोक वृंदावन से प्रकट हुआ है जैसे वृंदावन गोलोक से गोकुल आए जैसे राधा और कृष्ण की लीलाएं जो है धरती पर आए कृष्ण का पवित्र नाम भी है कृष्ण के नाम में राधा के नाम हम समझ सकते हैं हमें अनुभव हो सकता है उनके शाश्वत रूप का उनके गुण उनकी लीलाएं उनकी उनका उनके धाम का अनुभव हो सकता है और वो सब प्रकट हो जाते हैं और हमारे हृदय में भी लीलाएं प्रकट हो वो लीला प्रकट हो हर एक चीज प्रकट हो सकती कृष्ण ये दो अक्षर में प्रकट हो जाते नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य वह राघव पंडित के साथ उस गुफा में रहे पुंछरी के पास राघव पंडित को परिक्रमा में ले गए सारे ब्रजमंडल परिक्रमा में ले और वो भक्ति रत्नाकर में लिखा गया हम थोड़ा और आगे जाते हैं हम सुरभि कुंड पहुंचते हैं और हम और आगे रुद्र कुंड पहुंचते हैं जहां पर शिव जी अपने भाव विहल भगवान की लीलाओं के देखकर वो उनके आंखों से अश्रु प्रवाह हुए और फिर हम जतिपुरा पहुंचते हैं और हम इतने सौभाग्य है कि जतिपुरा के एक वासी हैं हमारे साथ श्यामदास जी हरी हरि गौड़ी संप्रदाय की दृष्टि से उस पर्वत के ऊपर ही जतिपुरा के जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो उसके ऊपर है और माधवेंद्रपुरी वहां जतिपुरा में रहते थे पुष्टि मार्ग के अनुसार श्रीपाद वल्लभाचार्य की वहां पर बैठक है जहां पर मुखारविंद है गोवर्धन का मुख वहां पर उपस्थित है पर हमने देखा कि हजारों हजारों लोग उनको दूध अर्पण किया जा रहा है मुझे याद है पहली बार मैंने गोवर्धन परिक्रमा 1971 में थे मेरे लिए बहुत आश्चर्य का अनुभव हुआ खुशी के क्योंकि मैं अमेरिका और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में बस सरल माना जाता है जो पश्चिम दिशा से होते हैं उनको बहुत ही पागल माना जाता है और पूर्व दिशा के लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं और जब बीच वाले जो कुछ उगाते अनाज इस तरीके से सरल रोग. मैं गोवर्धन परिक्रमा कर जतिपुर में पहुंचे, लोग आ रहे थे, दूध हजारों हजारों लीटर दूध, और मैं देख रहा था. मैं सड़क के नीचे गया 71 में, जो गटर होता था, जो गटर को
गटर
नाली नाली में जो जहाँ पे कचरा फेंकता है सब जाता है. अमेरिका में सब चीजें अंदर से ही हो जाता है. आप देखते नहीं कि कभी हम देखते नहीं है कि अमेरिका में कोई नाली में गया. बहुत अच्छे सफाई का साथ यहाँ पर रोड के साइड में, और सारे सुगंध और कलर, वो ध्यान से चलना पड़ता. मैं भारत में बहुत एक साल से भ्रमण कर, तो मुझे आदत हो गई थी नाली नाली सब गटर और कचरा. परिक्रमा से आज दूर नहीं जाना. मेरे को याद है, मुझे मैं एक बार देखा, अरे बहुत ही काला कचरा मैंने देखा, ये नाली में बह रहा था गटर में, और सुगंध इतनी दुर्गंध आ रही थी. गटर के पास में चल रहा था, जो सुअरों का परिवार है, एक माँ और पांच बच्चे सुअर के, जो छोटे बच्चे होते हैं सुअर के बहुत अच्छे लगते हैं. इस दुनिया में जो भी छोटा होता है वो आकर्षक लगता है. सुवर्णी को समझने के लिए सुअर होना चाहिए कि सुंदरता को पहचानने के. वो गटर के अंदर गिर और छोटे बच्चे से साथ गए, और वो खा रहे थे अंदर कचरे में, और वो खेल रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे, उनको इतना अच्छा लग रहा था. अमृत और छोटे छोटे जो सुअर उनके बालों से कचरा आ रहा था, वो और छाट रहे थे. मैंने कहानी क्यों बताई? इससे कि भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में कितना फर्क है पता चले. और मैं जतिपुरा में था, मेरी पहली गिरिराज परिक्रमा थी. मैं देख रहा हूँ कितना अभिषेक हो रहा है. एक घंटे से मैं देख रहा था अभिषेक. मैं इतना आश्चर्यचकित जतिपुर में थे, और मैं सड़क के नीचे जा रहा हूँ. मैंने देखा कि गटर दूध से भरा हुआ था, ये गिरिराज जी से आ रहा था. गिरिराज कुशीला को और ज्यादा गटर में आ रहे, और मैं सोच रहा था ये ऐश्वर्य शुद्ध ब्रिजवासी गायों का दूध कचरे से वहां पे गुजर रहे हैं. इंद्रलोक में भी ये संपत्ति नहीं दिखाई पड़ती। और बात की पुष्टि करने के लिए मेरे हृदय को प्रसन्न करने ब्रिजवासी लोटा भर के दूध को पी रहे थे वो नाली से दूध ले रहे थे और पी रहे थे, वो अमृत पी रहे थे उस स्वर की तरह नहीं, वो देख रहे थे ये चरणामृत, ये चरणामृत का घट रूप है, पी रहे थे मेरे पास लोटा नहीं था, मैंने हाथ नीचे किया, मैं समझ गया मैं अमेरिका से 10,000 मील दूर हूँ, मैं जतिपुर के गटर से दूध पिया और वो अमृत था, वो चरणामृत। मुखारविंद विट्ठलनाथ की समाधि जो कि वल्लभाचार्य के बड़े बेटे थे दक्षिणनाथ जी के महान पुजारी, जो महान वैष्णव आचार्य और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार वो गौड़ीय वैष्णव आचार्य आपस में अच्छे मित्र थे, दूसरे के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते, मुखारविंद के जिस सामने से एक बैठक श्रीपाद वल्लभ आचार्य की बैठक भी है, एक वहां पर एक दंडवती शिला है, अगर 7 बार परिक्रमा करते भक्ति से और प्रणाम करते हैं सारे अपराध जो आपने किए हैं गोवर्धन परिक्रमा में आपको पूरी परिक्रमा का फल मिलता है, वो एक परिशिला की परिक्रमा करने से आपको शिला के बारे में बताना चाहेंगे, ये बहुत आदर की बात है कि कि आपस में यहाँ पर बहुत खुशी हो रही, उनकी कथा सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही, ये मेरे 4 सालों के जो गोवर्धन पर्वत के पास मुझे आप सब भक्तों का दर्शन हो, ये 4 साल बजबस के आज का फल मिल आप सबका मिल गया, कथा मृत सुनने को मिल, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, वो दंडवती शिला जिस दंडवती शिला दंडवत मतलब कि प्रणाम कर अपने सिर को उठक ब्रज के गोवर्धन पर्वत के चरणों में अर्पण करना, और ये पवित्र स्थान जहाँ पर रासलीला हुई थी, ये दंडवत का मतलब दंड की तरह प्रणाम करना है, एक लकड़ी की तरह दंडवत करना, आप ऊपर उठते और फिर जमीन पर गिर पड़ते, और वो स्वभाव है भक्त का स्वभाव है भक्त जो हमेशा झुकते रहते हैं, हर एक चीज को प्रणाम कर, जो जो वस्त्र है व्रज में है वो सब भगवत रूप, जो भी व्रज में है व्रज में दिखाई पड़ते, चाहे वो पेड़ हो जो गोवर्धन पर्वत में, जो कि जो दूसरे के ऋषि मुनि है जो वो यहाँ पर जो यहाँ पर रहते हैं गोवर्धन के पर्वत, जिससे कि वो भगवान की लीला को देख सके। और इस तरीके से दंडवती शिला में जो कि शिला है वो दो चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि वो हरिदास वर्य भी है जो कि मतलब सारे भक्तों में हरि में श्रेष्ठ है, और गोवर्धन भी भगवान का ही रूप है। ये दो चीजें आ गई, दो चीज एक ही चीज में दो चीजें, शिला के प्रतिनिधित्व वो ही अपने आप में है प्रतिनिधित्व ने गिरिराज शिला जो है भक्त का रूप बता रही थी। वो कृष्ण का भी रूप है, भक्त का भी रूप है। वो परिक्रमा सात बार परिक्रमा करने से इस दंड इस पवित्र की सात बार परिक्रमा करने से जब महाराज ने बताया न केवल व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति को उसको पूरे पर्वतीय परिक्रमा का फल मिलता है। भक्ति मार्ग वो स्वर्ग में हम रुचि नहीं लेते, हम मुक्ति भी नहीं चाहते, हमें सिद्धि की भी जरूरत नहीं है। महाराज कितना सुंदर बता रहे हैं कि हम सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये परीक्षा परिक्रमा करने हमें फल प्राप्त होता है, एक दास बनने का फल, दास बनने का दास दास दासानुदास बनने का फल में। मैं इससे बढ़कर कोई बड़ा इनाम नहीं है। हरि गुरु और वैष्णव की सेवा करना, दासों के दास बनना, भक्तों का अनुयायी बनना, इस पवित्र भूमि के धूल को लेकर सिर पर लेना। मैं पर्याप्त समय नहीं लूं। एक बहुत सुंदर पद है गोवर्धन के, ये बता रहे हैं, एक भजन बता रहे हैं कि ये जो इसका अनुवाद बता रहे हैं। मैं किसी न किसी तरीके से गोवर्धन में रहूं, मैं 6-7 महीने पाश्चात्य देश में सिखा रहा था, मैं सबका मैं जी कर मैं गोवर्धन 5 साल रह सका, ये भाग हमेशा गोवर्धन में, गोवर्धन पर्वत के पास में। मानसी सेवा कर सकते, अगर आप 5 दिन तो मन में विचार करें, अभी क्षण यहाँ बिताएं, हरिदास वर्य के पास जो कृष्ण के स्वरूप है, नित्य प्रति मदन गोपाल, हर एक जीवन का क्षण जो है, जो मेरी चेतना जो है वो कृष्णवत हो जाए, कृष्ण भावना भावरित बन सके, नित्य प्रति मदन गोपाल के चरण कमल, मैं उनके उन चरण कमल के पास में रहना चाहता हूँ, मेरा मन वहाँ पर रहना चाहिए, जिससे कि मैं शरणागति भाव में रह सकता, उत्साह के साथ और सब्रता के। आज मैं सीखने को मिला शरणागति का मतलब है कि मैं भगवान के पे शरण में हूँ, बस हमें पकड़ना है भगवान, वो शरणागति में भी कुछ नहीं, शरणागति का उत्साह भी हर क्षण बढ़ता रहता है और सब्रता बनाए रख। बहुत सुंदर महाराज जी ने बताया चरण कमल ने, और उसका फल लिया ब्रज रज में लोग ब्रज रज में खेलना चाहिए, जो भक्ति का जो वचन किया भक्ति भाव जो प्रभु को समर्पित है उसका फल मिलना चाहिए। और फल क्या है, पूरे शरीर जो आनंदित हो जाता है, रोमांच होने लगता है, आपके शरीर के हर अंग जो है कृष्ण भावना भावित है, ब्रज रज में लौटते हैं और आपके और जमीन में गिर पड़ते और रोल करने और मस्त हो जाते हैं ब्रज रज में लौट के, और फिर कृष्ण के विचार करके सब बोल जाना चाहिए, पंच स्मृति सब बेकार बोल जाना, मुख्य चीज को याद रखना, हम सब कुछ बोल जो किसी संबंधित नहीं, सब कुछ ब्रज कृष्ण के भाव में मग्न हो जाए, वो इनाम है, वो बिना किसी प्रयास के प्राप्त। ब्रज रज में लेट फिर क्या कर लो, गोविंद कुंड में नहा करते हैं, फिर मैं गोविंद कुंड में स्नान करूं और भाव में मग्न हो जाए, जहाँ भी आप देखते हैं तो कृष्ण ही दिखाई पड़ते, आगे कृष्ण पीछे कृष्ण ऊपर कृष्ण नीचे कृष्ण, जैसे देखो सब जगह पर कृष्ण कृष्ण नीचे ऊपर अंदर नीचे सब जगह पर, ये ब्रज की भूमि में ये सब भागवत रूप है। रसिक प्रीतम है चित्त की बात, हरि राज जी एक जब बड़े अच्छे रहते पुष्टि मार्ग में, इस महान रस में श्री कृष्ण जी रसिक के श्रेष्ठ है, न से वार्तालाप करूंगा, जिसे और सेवा की भावना होगी, मैं गिरधारी को बात करूं, जिन्होंने जो भक्तों की रक्षा करते उनको भगवान के सब भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके मन उनका अपनी तरफ खींचते हैं बिना किसी प्रयास के, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं भगवान के महाराज के वचन को सुनना चाहता हूँ, मुझे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बोलने के गोवर्धन पर्वत की महिमा बोलने के, श्री राधे श्याम। श्यामदास प्रभु जी ने बोला, अभी फिर राधानाथ बोलेंगे। ये कथा सुनना 108 बार गोविंद कुंड में स्नान करने के बराबर, और गरुड़शिला के 7 लाख परिक्रमा के बराबर। हमको अंत करना चाहिए अभी, जब मैं प्रश्न बोलता हूँ इसका मतलब मैं अभी अंत नहीं करने वाला। सब्रता को बनाए रखें, फिर हम नाम कीर्तन करेंगे। यतिपुरा से हम आगे जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर जंगल, दाईं तरफ बहुत ही सुंदर उदार गिरिराज जी का सुंदर दर्शन, और फिर हम उद्धव कुंड पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब धरती छोड़कर चले गए अपनी लीला का अंत करने के बाद में, कृष्ण की जो रानियां थी जो द्वारका से, कैसे वो विरह में रह सके। वृंदावन में आए, मथुरा में, यमुना में पहुंचे। यमुना देवी ने समझाया जब कृष्ण जो है अक्रूर जी के साथ वृंदावन से मथुरा चले, श्री राधा रानी और गोपियां विरह के प्रेम में इतने पीड़ित थे, कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा जो मथुरा से उनके घनिष्ठ मित्र थे, मथुरा से और बाद में द्वारका से। दो कारण से उन्होंने भेजा उद्धव जी को, एक गोपियों के हृदय को सांत्वना देने के लिए और उद्धव स्वयं भी, उद्धव जो है ब्रजवासियों के प्रेम के भाव को समझ सके। हमारे प्रिय सीनियर गुरु भाई तुमने गिरिराज स्वामी महाराज हमें बता रहे थे, कुछ दिन पहले बता रहे थे कि तीन हरिदास वर्य के तीन उदाहरण हैं, महाराज युधिष्ठिर, उद्धव जी और श्री गिरिराज, और उसमें राधारानी और गोपी के अनुसार हरिदास के सबसे बड़े भक्त गिरिराज जी हैं, जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता प्रदान करते हैं। उद्धव के घनिष्ठ प्रेम के कारण कृष्ण के प्रति वो उनके हमेशा पार्षद थे, और किसी भाव में कृष्ण उद्धव जी से पूछते थे, उसके भाव को गंभीरता से ले, हमेशा साथ में रहते, विश्राम करते, खाने खाते थे, वो सभा में एक साथ जाते थे, वो एक साथ चलते हुए जाते थे, वो सारे मित्रों में श्रेष्ठ थे। कृष्ण दिखाना चाहते थे उद्धव जी को तो उन्होंने एक संदेश ब्रजवासियों के पास थे। जब उद्धव जी वृंदावन में आए और नंद महाराज और यशोदा माई और गोपियों से मिले, बिल्कुल अचिंत्य था। दिन में 24 घंटे वो सिर्फ रो रहे थे, प्रेम में कृष्ण के नामों को पुकार रहे थे, कृष्ण की सुंदर लीलाओं की चर्चा कर, एक दूसरे को जीवित रख रहे थे, कृष्ण का याद दिला रहे थे। श्री राधा रानी अविश्राम उद्धव के आई के पास रोते रहे, जहाँ पर वो नंदगांव में उनको मिले, उनके इतने आंसू आते कि वो कुंड बनाए थे उसमें गिर जाते, और उनके विरह का प्रेम इतना था कि उनका आंसू सूख जाता था। जब उद्धव जी ने प्रेम का स्वभाव देखा, उनका ये निष्कर्ष था कि मेरी तुलना में मेरे अंदर तो कोई प्रेम है ही नहीं, उसके तुलना में जो बड़े बड़े जो भक्त भी हैं, जो वैकुंठ के वासी भी हैं और वैकुंठ से भी ऊंचे मथुरा के द्वारका के जो वासी हैं, हमारा प्रेम जो है जितना ब्रजवासियों का प्रेम है उनकी तुलना में तो हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है. उन्होंने ग्वाल बालों को देखा कि मूर्ति की तरह खड़े हुए थे कि उनकी लीलाओं का गान कर रहे थे. और नंद और यशोदा वो सिर्फ कृष्ण के बारे में पूछ सकते हैं कि विरह के भाव. उद्धव जी ने कहा कि नंद महाराज कि कोई इतना भाग्यशाली नहीं कि आपसे बढ़कर कोई भाग्यशाली. और आप क्या बोल रहे हो, तुमको सौभाग्यशाली बोल रहे हो. गरीब व्यक्ति अगर गरीब व्यक्ति को एक बहुत अच्छी कोई मणि मिलती और उसकी कीमत को नहीं समझ सकते और उस अवेलना के कारण उसको खो बैठता है तो वो भाग्यशाली नहीं माना जाता, वो तो अभागा है. हमारे पास सबसे बड़ा मणि और हम उसको खो बैठे, हम सबसे बड़े अभागे हैं. लेकिन उद्धव क्या बोल सकते थे, वो नंद महाराज के चरणों की धूल अपने सिर ना चाहते. और उद्धव क्यारी में जब राधा रानी और गोपियों को मिले जहाँ पर भ्रमर गीत बोला गया था, श्रीमती राधा रानी उनके प्रेम के भाव में उन्होंने एक भाले भ्रमर काले भ्रमर को देखा और माना कि कृष्ण का संदेश है. उनके हृदय के प्रेम को बता रहे थे. उद्धव जी ने जब देखा उन्होंने प्रार्थना की लाखों गुना ज्यादा, जो मैं उनकी जो सेवा कर सका उससे लाखों गुना ज्यादा है. गोप और गोपियों की चरणों की धूल में अपने सिर पर लेख सको. उद्धव लेकिन राजकुमार थे, बृहस्पति के शिष्य थे, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे. उसको बहुत लज्जित हो जाते थे अगर गोपियों के रूप में ऐसे व्यक्ति अगर उनके चरणों की धूल लेते थे. उद्धव कुंड, उद्धव जी उन्होंने तपस्या की, वहां पर तपस्या की और ये प्रार्थना की जन्म ले सके, एक छोटे से लता के रूप में जन्म ले सके, एक घास की लता के रूप में आ जाए, जिससे गोपियां और गोपियों के उनके सिर के ऊपर उनको गोपियों के धूल को स्वीकार कर सके. ये जानते हैं कि जब तक हमें आशीर्वाद नहीं मिलता है वृंदावन वासी हमें वो प्रेम नहीं मिल सकता. ये उनका सबसे बड़ा खजाना था और ये उनकी अभिलाषा थी. कुसुम सरोवर के उद्धव कुंड के दूसरी ओर उद्धव बैठक जहाँ पर कृष्ण के प्रपौत्र ने उद्धव जी की मूर्ति स्थापना की और उस स्थान पर उस इलाके में कुसुम सरोवर के तट के ऊपर उद्धव की प्रार्थना पूरी हो गई. वो वहाँ पर शाश्वत रूप से गुलमलता के रूप में निवास कर रहे हैं, एक छोटे से घास के तिनके के रूप में जहाँ पर वो ध्यान कर रहे हैं राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाओं पे. और वो गोपियों की धूल वो प्राप्त कर रहे हैं। जब रानियों ने सुना कि कैसे उद्धव जी ने गोपियों को शांत किया, उनको उस स्थान पे भेजा गया और उन्हें वहां नाम कीर्तन के वज्रन आपके साथ में बड़े उत्साह के साथ प्रेम भाव से समझ गए कि उद्धव जी अपने आप को प्रकट करेंगे अगर हम सच्चे शुद्ध भक्ति से राधा और कृष्ण के नाम को पुकार सके। बहुत गहरा वो एक उत्सुकता के भाव से वो जीवन और मृत्यु के साथ ये भाव थे, उस भाव से उन्होंने पुकारा हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
और गुलमलता से उद्धव जी प्रकट हो गए और 30 दिन तक श्रीमद् भागवत मैंने बोला और उसके अंत में जब श्रीमद् भागवत के अंत में जिससे कि सारे हमारे सारे पाप दूर हो जाए अंतिम पूर्णता प्राप्त कर सके सिर्फ नाम कीर्तन के द्वारा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
उन्होंने कृष्ण की लीला बता के सबको विमोहित कर दिया। उसका निष्कर्ष कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सबके सामने प्रकट हुए, उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया, उनके हृदय को जीत लिया और कृष्ण उनको वापस भगवत धाम लेकर चले गए। ये कुछ उद्धव कुंड में हुई हुई लीलाएं हैं और कल हम श्री राधा कुंड पे चर्चा करेंगे और हमारी परिक्रमा को गोवर्धन परिक्रमा को जारी रखेंगे। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगन्नाथपुरी में गंभीरा में जब वे राधा रानी के प्रेम विरह में वो प्रेम का अनुभव कर रहे थे, उनके घनिष्ठ पार्षद स्वरूप दामोदर और रामानंद राय वो हमेशा सुंदर कीर्तन गाते थे, सुंदर प्रार्थना गाते थे, हरि कथा और हरि कीर्तन। और व्यक्तिगत रूप से ये चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ा गहरा सहयोग राधा रानी के प्रेम को समझाने का, और उन्होंने कीर्तन दुनिया से शेयर किया। शिक्षाष्टकम जो 8 श्लोक हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय से प्रकट, वो बहुत ही गहरी अवस्था महाभाव की अवस्था में प्रकट। और हमारे प्रिय गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां ग्रहण की नित्यानंद प्रभु के भाव में, वो कृपा सबको वितरित करने के लिए जो सबको मिल सके, और उनकी कृपा से हम यहाँ पर एकत्रित हुए अपने कानों को खोल सके और हृदय को खोल सके गिरिराज जी की लीला को सुन सके और हम उसका सेलिब्रेट करेंगे उत्सव बड़े उत्साह के साथ। जब हम मैं आनंद से बोलता हूँ एक भक्त के लिए दूसरे को भक्त आनंद देना, ये गोवर्धन का उदाहरण है, फिर कृष्ण को आनंद देना। हमें बहुत सारी तकलीफ भी हो सकती, हमें खांसी भी होती, हमारे अंदर से पवित्र धूल जमे, इतना बड़ा ईश्वर्य जो देवता जो है इस धूल को प्राप्त करने के लिए जो उनको प्राप्त नहीं हो सकता, और हमारे पूरे शरीर और हमारे शरीर में हमारे फेफड़े में भी पहुंच गया धूल, अमृत में हम डूब रहे हैं। गिरिराज हमें सिखा रहे हैं, दूसरे भक्त को प्रेरणा दे, दूसरों का कृष्ण प्रेम बढ़ाने से हम कृष्ण को प्रसन्नता दे सकते हैं। कीर्तन में हम उत्साही होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उत्साही बना रहूंगा, मुझे अच्छा लगे मुझे नहीं भी लगा वो भी बहुत अच्छा है, उत्साह लगे या नहीं लगे दूसरे को प्रेरणा दे, दूसरे की सेवा करने हम जैसे कीर्तन करते हृदय से भगवान के नाम को पुकार, कृष्ण की आशीर्वाद हमारे ऊपर सबके ऊपर आ सके, ये संकीर्तन है एक साथ। हम सब गा रहे हैं एक दूसरे के लिए, पूरे दुनिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।